संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के दान में महान महान जिन बिचले हमारे ध्यान में। यद्यपि 105वीं गाथा कल पूरी हो गई थी लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा है, बताया है और इसलिए इसे निकालो। देखो यहां से पेज नंबर 78 आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए उक्त संदर्भ में बौद्ध और नैयायिक मतों को प्रस्तुत कर उनका निराकरण भी करते हैं। ये बात उसमें नहीं आई थी अपनी। कहते हैं कि सत्ता के समवाय के कारण द्रव्य सत नहीं है अपितु सत्ता स्वयं ही द्रव्य है। वे यह भी कहते हैं कि द्रव्य उपचार से सत्ता स्वरूप नहीं है अपितु परमार्थ से सत्ता स्वरूप है। ध्यान रहे नैयायक यह मानते हैं कि द्रव्य सत्ता के समवाय से सत है स्वयं सत नहीं है, और बौद्ध यह मानते हैं कि द्रव्य का अस्तित्व उपचार से है परमार्थ से नहीं। द्रव्य स्वयं सत्ता स्वरूप है और द्रव्य का अस्तित्व भी वास्तविक है परमार्थ है उपचार से नहीं। यहां यह कहकर नैयायिक और बौद्ध मतों का खंडन कर दिया गया है। समवाय के संबंध में 2-3 दिन 4 दिन पहले कुछ बताया था कि समवाय एक संबंध है और वो जिस दर्शन में उसे माना है उसे उनने पदार्थ माना है, उसे सातवां पदार्थ माना है समवाय को। और उसका काम क्या है कि द्रव्य से गुणों को जोड़ना, गुण अलग हैं और द्रव्य अलग हैं और समवाय नाम के संबंध से वे आपस में जुड़ जाते हैं। जैन दर्शन कहता है कि सत्ता नाम का एक गुण है, सत्ता का बचा अस्तित्व का, तो सत्ता नाम का गुण ये द्रव्य से समवाय नाम के संबंध से नहीं जुड़ा है बल्कि वो द्रव्य स्वयं सत्ता स्वरूप है। ये उसका कथनचित अभेदपना है, समझे ना। और कथनचित भिन्नता है वो अन्यत्व की अपेक्षा, जो अगली गाथा में विस्तार से बताएंगे। अन्यता माने द्रव्य द्रव्य है और गुण वो सत्ता गुण है। सत्ता जैसे अनंत गुण है एक एक द्रव्य में, और सत्ता उनमें एक गुण है, तो हम यही कहें गुण गुण ही का अंतर है। फिर लक्षण भेद है, स्वभाव भेद है, और जितना भी अपन भेद करना चाहेंगे वो भेद निकल आएंगे उसमें, लेकिन वास्तव में प्रदेश भेद नहीं है। जिनके प्रदेश एक होते हैं आप समझे ना, वो अपृथक कहलाते ना, वे पृथक पृथक नहीं है, वे अन्य अन्य हो सकते हैं। तो इनमें अन्यत्व तो है द्रव्य में और सत्ता में, पृथकत्व तो नहीं है। ये बात यहां बताई है और नैयायिक को बौद्ध मतों का खंडन किया है कि समवाय से नामक संबंध से मन सत्ता नाम का गुण द्रव्य नामक पदार्थ से किसी दूसरी चीज से जुड़ा नहीं है, स्वयं द्रव्य सत्ता स्वरूप ही है। और बौद्ध लोग कहते हैं उपचार से है वास्तविक नहीं है, तो कहते हैं सत्ता गुण उपचार से नहीं है वास्तव में ही है, ख्याल में है ना। ये बात इसमें है, बाकी ये वृंदावन दास जी का और क्या देवीदास जी के छंद दिए हैं, तो इन्होंने किस तरह से एक एक छंद में और उस बात को इतनी गंभीर बात को समेती है इसके नमूने के लिए दिए हैं, इन्हें पढ़ना। और फिर स्वामी जी का कोटेशन है, निष्कर्ष निकाले थे स्वामी जी ने। देखो ये पेज नंबर 79 पे नीचे की चाल लेन देखें, गुण और गुणी में नाम संख्या लक्षण भेद है किंतु प्रदेश भेद नहीं है। अपने सत्ता स्वरूप द्रव्य के ऊपर नजर करने से धर्म होता है। अब ये पॉइंट है ना, यदि द्रव्य स्वयं से ही सत न हो तो ध्रुवत्व के असंभव होने के कारण द्रव्य स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाएगा, माने वस्तु ही नहीं रहेगी। जो अपन ने पढ़े थे ना टीका में, वो बातें जो कितनी कठिन महसूस हो रही थी, गुरुदेव ने उनको बराबर पॉइंट बना करके यहां रखा है और उसमें से ऐसे ही नहीं निकल गए, वो बराबर एक एक बात पर विचार किया। यदि द्रव्य अपने सत्ता गुण से भिन्न हो तो सत्ता गुण का प्रयोजन नहीं रहता। क्या प्रयोजन नहीं रहता मालूम? अपने क्या कहा था, सत्ता गुण का क्या काम है? अस्तित्व सिद्ध करना। अब वो उसके बिना ही उसका सिद्ध हो गया अस्तित्व, तो फिर सत्ता गुण की जरूरत नहीं रही, सत्ता गुण के बिना ही, क्योंकि सत्ता का कार्य तो द्रव्य के अस्तित्व को रखना है और अस्तित्व के बिना ही द्रव्य की सत्ता हो गई। यदि द्रव्य उसके सत्ता गुण से भिन्न रहे तो सत्ता गुण का प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए इससे सत्ता गुण के अभाव का प्रसंग आएगा, फिर सत्ता गुण की क्या जरूरत है? प्रश्न, क्या स्वप्न की पर्याय भी सत्ता वाली होगी? एक गुरुदेव ने कितनी बारीकी से विचार किया, इसके लिए मैं तुमको ये पढ़ रहा हूं। कल कह दिया था अपन अगली गाथा पढ़ेंगे। अब स्वप्न की पर्याय क्या है, क्या क्या है कि स्वप्न में जो हम देखते हैं वो तो कुछ नहीं है वास्तविक, सब सारी दुनिया ऐसे ही मानती है कि स्वप्न जो हम देखते हैं तो उसमें जो जो दिखाई देता है वो, इसलिए स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है। और मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं ये अपने अपने मन की है, मन में बातें बसी रहती हैं, फिर वो ही सपने में आ जाती हैं। फिर कहते कि नहीं, कभी कभी तो विरुद्ध आती हैं, जैसे हम मन में जो सोचते हैं निर्णय पर पहुंचते हैं ना, तो सपने में उसके विरुद्ध बात आती है, तो वो तर्क देते हैं कि तुम्हारा एक तरफ ढुलता है ना और दूसरा प्रतिपक्षी कोई तुम्हें से बहस कर, तो तुम्हारा मन तुमसे प्रतिपक्ष तर्क रख, वो तुमसे बहस करता है, तुम्हारे अंदर में ही छिपी है वो सब बात, ख्याल में आई ना, कि जो तुम खुद अपने से कहना चाहते हो और नहीं कह पाते हो तो स्वप्न में आकर कोई दोस्त कह जाता है, अध्यापक कह जाते हैं, गुरुदेव कह जाते हैं, तो स्वप्न कहते वास्तव में कुछ नहीं है। लेकिन गुरुदेव बार बार यदि उनको पढ़ोगे आप तो वो आएगा, वो कहते हैं कि ये वो ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है, तो ज्ञान की पर्याय कुछ नहीं है उसमें, तो अपनी जो ज्ञान की पर्याय काम कर रही है और तो उसमें जो गे झलक रहे हैं, तो वे गे जगत में वैसे हों चाहे नहीं हों, वो ज्ञान की पर्याय में तो आए, पूरा नई गमना इस पर खड़ा हुआ है, है ना? ये जो कल्पना जो नई गम नये के जो विषयभूत पदार्थ होते हैं, तुमने बहुत विस्तार से उदाहरण दे दे करके समझाया था, संजीव जी ने उसने सब बताया था कि ऐसा गधा बना दें जिसके बड़े बड़े सींग खड़े कर दें, उन्होंने कहा इतने बड़े सींग बना दें कल्पना में कि वो दोनों जगह बना दिए थे भैंसे को आचार्य अमृत ने, कि ऐसा ब्यासा कि जिसके सींग लोक के अग्र में जाके अटक गए हैं। क्यों? तो ऐसा ऐसा कोई भैंसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन वो ऐसा भैंसा गर्दन के तोड़ने के काम में आ जाता है। स्वप्न के कभी कभी बहुत भयंकर परिणाम हो जाते हैं ना, तो जो स्वप्न कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। देखो हाँ, वह पर्याय की भी सत्ता वाली है, ये गुरुदेव का जवाब है। स्वप्न में जो हुआ है, सपना आया है, वो सपना सपने के हिसाब से सत्य है। मैं ये कह रहा हूं कि आज मुझे ऐसा ऐसा सपना आया, तो जो सपने में आया हो वो सत्य है कि नहीं है, जगत में है कि नहीं है, सत्य माने जगत में उसकी सत्ता है कि नहीं है, लेकिन मेरा सपना सत्य है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं कि मैं मेरे को सपना आया है और मैंने सपने में ये देखा है। ज्ञान की पर्याय में अस्तित्व का अभाव नहीं होता। अपनी ज्ञान की पर्याय में राग की पर्याय तथा अन्य पदार्थ जो स्वप्न में भाषित होते हैं वे जानने में आते हैं, इसलिए वह अस्तित्व वाली पर्याय है। स्वप्न भ्रम नहीं है, स्वप्न अवस्तु नहीं है, वह भी एक वस्तु है। जीव के छायोक्ष में ज्ञान की पर्याय की उस समय की योग्यता है, तब वह स्वप्न देखता है। इस गाथा में गुणगुणी अभेद हैं ऐसा सिद्ध किया है और द्रव्य और सत्ता का प्रदेश भेद नहीं है ऐसा कहा है। यहां अस्तित्व गुण की बात कही है, किंतु सभी गुणों की सत्ता से द्रव्य अभेद है ऐसा समझ लेना चाहिए। दूसरी की सत्ता से अपनी सत्ता है ऐसा मानने वाला सत्ता गुण और सत्तावान द्रव्य को भिन्न भिन्न मानता है। भाव और भाववान पृथक नहीं होते, शक्ति और शक्तिवान पृथक नहीं है, स्वभाव और स्वभाववान पृथक नहीं है, इसलिए द्रव्य स्वयं ही सत्ता है। द्रव्य सत्ता है स्वयं, अथवा गुणगुणी अभेद हैं, उनमें पृथकत्व नहीं है ऐसा निर्णय करना चाहिए। इस गाथा और उसकी टीका में विविध तर्कों से यही सिद्ध किया गया है कि सत्ता और द्रव्य अभिन्न ही हैं, एक ही हैं। यद्यपि यह परम सत्य है कि सत्ता गुण है, अस्तित्व नामक सामान्य गुण है और द्रव्य गुणी है, इस प्रकार इनमें गुणगुणी भेद है, लक्षण भेद है, तथापि प्रदेश भेद नहीं है। जब तक प्रदेश भेद न हो तब तक गुणगुणी को भिन्न नहीं माना जाता, अभिन्न ही माना जाता है। ये इसकी बात है। देखो द्रव्य और सत्ता, सत्ता और द्रव्य मतलब अस्तित्व गुण, ये भिन्न भिन्न भी हैं और अभिन्न अभिन्न भी हैं। और दोनों की अपेक्षाएं अत्यंत स्पष्ट हो गई, दोनों का अस्तित्व एक है, अस्तित्व एक है माने प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए भी दोनों अभिन्न हैं और वे वास्तव में अपना लक्षण भेद वगैरह हैं, इसलिए भी भिन्न हैं। अब जैसे अपने निश्चय व्यवहार करते हैं ना, कि निश्चय अलग है, व्यवहार अलग है, दोनों की परिभाषाएं बताते हैं, फिर निश्चय पे बल देते हैं, फिर निश्चय व्यवहार का निषेध कर देता है, तो अभी ऐसा यहां क्या होगा? यहां तो दोनों बिल्कुल वास्तविकताएं हैं। ये निर्णय करना ही भारी हो जाएगा कि दोनों निश्चय कौन है, क्योंकि आत्मा में गुण अनंत हैं और वे अलग अलग हैं, ये बात भी कोई काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल वस्तु में ये है। और उनका अस्तित्व जो है ना, मैं प्रदेश अलग अलग नहीं है, इसलिए उन्हें अलग अलग किसी भी कीमत पर किया नहीं जा सकता है, उन्हें बांटा नहीं जा सकता है, इसलिए ये भी बात बिल्कुल 100% सत्य है। कहना है ना, अब इनमें एक को व्यवहार कहके, एक को निश्चय कहके, और हम एक को कुछ कमजोर बताएं और दूसरे को मजबूत बताएं, तो हम वस्तु के स्वरूप जो है उससे विचलित हो जाएंगे। फिर भी हमें लगाना होगा तो लगाएंगे, क्योंकि अभेद के लक्ष्य से विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती है और भेद के लक्ष्य से विकल्प की उत्पत्ति होती है। तो जब हम दृष्टि के विषय में ले जाएंगे, अभेद की बात करेंगे, तो अनुश्रुति से रचित प्रवाह, चाहे वो प्रदेशों का हो, चाहे गुणों का हो, चाहे पर्यायों का हो, उस पर वजन देंगे और उस भेद को गौण करेंगे, उसे व्यवहार करके हे कहेंगे। इसलिए कि सारे भेद जिसमें गर्भित हैं, मान जैसे हमने परम शुद्ध निश्चय में से सारी पर्याय निकाल दी, न शुद्ध पर्याय, न एक देश शुद्ध पर्याय, न शुद्ध पर्याय, जो सबसे रहित है वो परम शुद्ध निश्चय नए है। लेकिन वो निकाल के कोई अलग थोड़ी कर दी, वो तो वस्तु के अंदर ही विद्यमान है ना। वास्तव में उनका भेद निकाल दिया और उन्हें अभेद रूप में स्वीकार कर दिया। तो कहते ये तो भेद को निकाला है, पर्याय क्या निकाली? अरे पर्याय पर्याय रूप में रहेंगी तो भेद खड़ा रहेगा, इसलिए कहते पर्यायों को निकाल दी, क्योंकि पर्यायों के अभेद का, गुणों के अभेद का और प्रदेशों के अभेद का नाम तो द्रव्य है। गुणों के समूह को क्या बोलते हैं? द्रव्य। अब गुण द्रव्य में खड़ा किया ना, तो गुणों के समूह, तो समूह होने दो ना, फिर तुम गुण खड़े रखे तुमने है? फिर तुम गुण, यदि तुम दाल खा रहे हो तो उसमें नमक, मिर्ची, धनिया, दाल, पानी, गरमाई, इनको खड़ा रखोगे तो दाल नहीं खा पाओगे हैं? इन, 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 इनका स्वाद जो आप बताओगे वो दाल का नहीं होगा, कोई नमक का होगा, खिचड़ी का होगा। तो जब वो भेद रोकोगे, अभेद में जाओगे, अभेद बने क्या है हमें कुछ मतलब नहीं, ये तो रसोई है जाने। फिर बनाता बहुत बढ़िया है पर मजा आ जाता है, तो मजा कब आता है बोलो? वो भेद के विकल्प में आता है कि अभेद के अनुभव में आता है? तो वो प्रयोजन की दृष्टि से अध्यात्म में भेद पक्ष भी उतना ही मजबूत है, फिर भी उसको गौण किया जाता है। अब व्यवहार दो तरह का होता है, एक असद्भूत और एक सद्भूत। जो एक को बोलते हैं हम उपचरित व्यवहार और एक को बोलते हैं भेद व्यवहार। ये जो अपनी नए चक्र की पद्धति है ना, इससे थोड़ी सी अलग हटके हम इसमें बताई तो है, तुमने कितना ध्यान दिया कि उपचार और उपचार में उपचार आ ना, ऐसे दो भेद किए हैं कि एक उपचार जो है वो व्यवहार है और उपचार में उपचार वो उपचार है, ऐसा कुछ भेद किया है, समझे ना। जैसे कि जो एक दफे उपचार लगे से, ये मेरा बहनोई, तो ये उपचार हो गया, और फिर बहनोई का बहनोई, तो कहते उपचार में उपचार। तो ऐसा उसमें वजन लगाते जाते हैं, लेकिन वहां पर कहीं भेद के लक्ष्य से हम सद्भूत व्यवहार भेद के लक्ष्य से आता है। भेद के लक्ष्य क्यों कहलाता है? क्योंकि उसी द्रव्य की पर्यायों के साथ उसकी चर्चा होती है। वो अपना राग से भिन्न है, कभी रागता से भिन्न है, कि निर्मल पर्याय से भिन्न है, कि अभिन्न है, जो चर्चा होती है वो जो उसकी चीजें हैं वो उन्हीं से भिन्न भिन्न की चर्चा होती है, समझना परमा, इसलिए वो भेद व्यवहार है। और इसमें संयोग से चर्चा होती है, असद्भूत व्यवहार में स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं क्या नहीं, शरीर मेरे हैं क्या नहीं। बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ लो, जो संयोग के साथ जितना भी व्यवहार का वर्णन होगा, मान प्रद्रव्य के साथ जो भी व्यवहार की चर्चा होगी वो सब गारंटी से असद्भूत होगी, मैंने असद्भूत व्यवहार नए का विषय होगी, पक्की बात है। क्यों? कि वो असद्भूत है, कि हम संबंध की व्यवहार बता रहे और संबंध है नहीं, इसलिए असद्भूत कहते हैं। कि ये ऐसा संबंध है जो संबंध है नहीं, क्या? अब ये तो हमारे संबंध ही हैं, क्या है कि हमारे बहनोई हैं, ये साले हैं, ये मामा हैं, और ये ऐसे संबंधी हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। क्यों बोलते ना अपन, आपके संबंधी हैं क्या? हाँ, तो बताओ क्या है, तो बताओ मामा के साले को बताओ क्या है। भारतीय संस्कृति में कोई शब्द ही नहीं है, हमारी जो शब्दावली है उसने ही ये कह दिया, ज्यादा संबंध मत बढ़ाओ। क्या समझ आए ना, क्योंकि उसने उनके लिए शब्द ही नहीं रखे, क्योंकि तुम ज्यादा संबंध बढ़ाओ ही नहीं। वैसे तो परद्रव्य में कोई भी अपना नहीं है और कुछ भी अपना नहीं है, पर से कुछ भी संबंध नहीं, ये बात पक्की है ना। अब तुम्हें जोड़ना है तो जोड़ो, लेकिन अब ज्यादा मत जड़ाओ, समझ गए ना। जितना करना है जोड़ना है तो जोड़ो, ज्यादा तो उन्होंने साले बहनोई मामा फूफा इनके लिए तो शब्द रखे, लेकिन इनके साले साले का साला बहनोई का बहनोई मामा का साला फूफा का इसके लिए हमारी डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है, फिर भी हम मामा के साले को मामा कह देते हैं, बहनोई के बहनोई को बहनोई जी कह देते हैं, फूफा के बहनोई को भी फूफा जी कह देते हैं, करते हैं ना, हम चलाते हैं काम, क्योंकि हमको वो आचार्यों की आज्ञा पसंद नहीं है, हमें तो बहुत संबंध बढ़ाना है। वो कहता है इसके आगे कोई संबंधी है ही नहीं, और वो इसलिए वास्तविक है कि जैसे हमारा मामा है ना, तो मामा की लड़की से हम हमारे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेना, दक्षिण भारत को छोड़ देना, उदाहरण के लिए समझा, लड़की से हम शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मामा के साले की लड़की से कर सकते हैं, और कहते हैं उसको भी मामा, उससे हमारा गोत्र बच जाना चाहिए, वो तो बच ही जाएगा गारंटी से है? तो यदि वो हमारा संबंधी होता यानी मामा होता तो हम नहीं करते, इसका मतलब मामा नहीं है ये नक्की हो गया ना, फिर भी आपको कहना है तो कहो। आचार्य ने तो कोई शब्द नहीं रखा, और अंग्रेज लोग हमसे भी आगे निकले, उन्हें इतने संबंध फैला के क्या करोगे, इतने भी कैसे निभाओगे, कितने ये मामा फूफा बहनोई साले ये कोई कोई नहीं है, कुछ एक ही संबंध है, बोले अंकल आंटी और क्या बोलते तुम बराबरी वालों को, कैसे कुछ भेद करते हो ना, बस एक इनला कानूनी भाई, वाह वाह साला भी कानूनी भाई, बहनोई भी कहनी, सब क्यों एक भाई एक हिसाब में सबको निपटा दिया, क्योंकि ज्यादा संबंध बढ़ाने के पक्ष में वो नहीं है। आप समझे ना, इधर राजस्थान में खासकर खंडेर वालों में तो बस जमाई ही हमारा रिश्तेदार है, फिर उस जमाई के भाई और सब विवाही है, माने वो जमाई का बाप, जमाई का चाचा, जमाई का मामा, जमाई का फूफा, जमाई का भाई, कोई भी वे सब क्या है, बेवाई, जाई साहब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हमारे बुंदेलखंड में ऐसा नहीं है, बुंदेलखंड में बहुत रिश्तेदारियां होती, ये भी हमारे हैं, ये उनके यहां हमारा संबंध कैसे हो सकता, कि तुम अलग गोत्र के भी अलग गोत्र क्यों नहीं हो सकता, अरे अरे भी हमारे उनके हैं, उनके पड़ोस में रहते हैं, इस नाते उनके भाई है, इसलिए नहीं हो सकता, तो पड़ोस में संबंध क्यों करते हो, फिर अमेरिका में जाके करो, पाकिस्तान तो पड़ोस ही है, अरे पड़ोस में नहीं करोगे तो घर में करोगे क्या, पड़ोस में तो करना ही चाहिए ना। इधर ऐसा है मारवाड़ में, मारवाड़ियों में ऐसा है, इसके आगे नहीं मतलब आगे ज्यादा बढ़ते हैं, और उधर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, और एक इधर एक और एरिया विशेषों की अलग अलग सारी पद्धतियां हैं, ख्याल में आई ना, कि जहां कितना उसको महत्व दिया जाता है ना, उसका ये है, तो भाषा से मालूम पड़ता है कि भाषा ने वो स्वीकार नहीं किया। तो अपने दो संबंधों की बात कर रहे थे मन, कौन कौन, सद्भूत और असर्व, साला बहनोई नहीं सद्भूत और असद्भूत, तो एक तो संबंध वास्तव में है, वो सद्भूत संबंध है, वो एक संबंध है ही नहीं, लेकिन हमने कहने के लिए बना लिया है उसे असद्भूत, तो पर के साथ तो हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसका नाम हमने रखा असद्भूत। अब जो जब हम सद्भूत कहते हैं तो सद्भूत का अर्थ यह है कि वो चीज तो हमारी ही है, कि हमारी प्रजा है, कि हमारा गुण है, कि हमारा प्रदेश है। तो हमारे गुण, प्रदेश और पर्याय, इनके साथ जो हमारे संबंध हैं, उन संबंधों को सद्भूत व्यवहार कहते हैं। तो इसको भेद व्यवहार भी कहते हैं। तो भेद के लक्ष्य से विकल्प की उत्पत्ति होती है, और हमको निर्विकल्प अनुभूति चाहिए, इसलिए इसका भी हम निषेध कर देते हैं। लेकिन ये वो नहीं है, इस रूप निषेध नहीं है। हमें लक्ष्य में नहीं लेना, कब जब अनुभव करना है तब, ऐसे अर्थ में है। और वो तो है ही नहीं, जैसे स्त्री पुत्रादि नहीं है वैसे राग नहीं है, ऐसा नहीं है। राग है, राग की सजा आपको मिलेगी मिलेगी और मिलेगी, बच नहीं सकते। लेकिन कोई स्त्री पुत्र बाप अपराध करे तो आपको उसकी सजा नहीं मिलेगी। वो जेल जाए, फांसी पर चढ़े, तो आप पर कोई असर नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बेटा है तो मुझे 20 साल की कैद हुई है तो 2 साल की तुम्हें भी होगी। कानून ऐसा बनाना चाहिए ना कि उनके घर वालों को भी होना चाहिए, क्योंकि उसने जो पाप किया है वो घर वालों ने उसमें सहयोग किया होगा। पैसा लाया होगा चोरी करके तो सबने मिल बांट के खाया होगा, छिपाया होगा थोड़ी। ऐसा बनाना चाहिए कानून, क्यों कि 20 साल की जिसकी सजा होगी उसके बाप को भी 2 साल के लिए जाना पड़ेगा, के बेटे को भी जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट, सारा विश्व इस बात को मानता है कि वो अलग हैं, वे इसके कोई नहीं है। तब तो उसको कोई सजा नहीं है, कि साहब उसे बहुत तीव्र राग है उसके, तो वो तो सजा मिले ही नहीं ना उसे। उसे तीव्र राग है और वो जेल जाएगा तो उसे दुख होगा कि नहीं होगा, वो सजा है, वो पर्याप्त है। वो जो इसकी सेवा करता होगा, कमा के लाता होगा, खिलाता होगा, वो सब सुविधाएं इसकी छिन जाएंगी कि नहीं छिन जाएंगी, तो एक छोटी सजा है, ये सजा है ना। यानी पति को जेल हो गई, अब पत्नी को कोई सजा नहीं हुई, अपन कहते हैं हमें घर में है। लेकिन वो 8 साल 10 साल तक पति जेल में है तो अकेली रहना पड़ेगी, विधवा जैसी जीवन बना करके, और 2 रोटियों की व्यवस्था भी खुद करनी पड़ेगी, तो ये छोटी सजा है। वो जितना रागांश था, जितना वो अपराध में शामिल थी, उतनी तो सजा मिलेगी क्या? लेकिन ऐसी सजा नहीं मिलेगी जैसी कि उसने अपराध किया, और जो उसमें अपराध में शामिल नहीं है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। अब ये गाथा अब अपनी खत्म हो गई, अब अपनी अगली गाथा चलती है, पढ़ो।
अविभत पदे सत्तम पोदत्त मिदि शासनम हि वीरस्य अण्णत्तमत भावोणत भवम होदि कदमेगम जिन वीर के उपदेश में प्रतक कविन प्रदेश का अतद्भाव ही अन्यत्व है तो अतत् कैसे कहो।
ये बहुत कम गाथाएं ऐसी आती हैं कि जिनमें श्री तीर्थंकर का भगवान का नाम लेकर के बात की हो। ये उन भाग्यशाली गाथाओं में एक है जिसमें भगवान महावीर का नाम लेकर के कहा है। एक जगह नाम लेंगे तो 10 जगह कह देंगे जिन्हें ही पन्नतम, जिन्हें भगवान ने कहा है, भनदा खल सभ्य दर्शी ही, सबको जानने वाले ने कहा है। माने अपने यहां ऐसा ज्यादा भेदभाव नहीं है आदिनाथ में, महावीर में। भले ही महावीर का शासन हो, पारसनाथ का शासन नहीं हो अभी, तो महावीर का हो, लेकिन अपने यहां होना भी नहीं चाहिए और दृष्टि में है भी नहीं, साधारण समाज के अंदर भी नहीं है। यानी वो भले ही ऐसी बातें करते हो कि भगवान महावीर ने ऐसा कर दिया, कि पारसनाथ ने ऐसा कर दिया, लेकिन वो 24 तीर्थंकरों को समान ही मानते हैं, भी समान ही सब कुछ करता धरता मानेंगे तो समान मानेंगे। और अपने यहां ऐसा भी नहीं है कि भगवान महावीर ने अलग कहा और पार्श्वनाथ ने अलग कहा था, समझे ना। अपने यहां तो एक बात जो आई महावीर की दिव्य ध्वनि में वही सब आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में आई थी, वही अजितनाथ की, ऐसी मान्यता है और बिल्कुल 100% सही है, वही रखना चाहिए। श्वेतांबरों में कुछ मान्यता हट गई है, मालूम तुम्हें क्या है? वो लोग ऐसा मानते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान ने 4 महाव्रत रखे थे, उसे पार्श्वनाथ भगवान के धर्म को वे चातुर्याम बोलते हैं। ये शब्द सुना कभी कि नहीं? कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य को नहीं माना था उन्होंने, क्या? तो वो कहते हैं कि भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के चतुर्याम में एक महाव्रत और जोड़ा और जिसका नाम है ब्रह्मचर्य महाव्रत, और इसीलिए वो नग्न हुए। क्या माने? वो नग्नता उन्होंने जो धारण की, क्योंकि वो नग्नता से वो ब्रह्मचर्य को मतलब वो करना चाहते थे, तो उनके वो 5 महाव्रत हो गए और उनके चातुर्याम माने 4 महाव्रत हैं, और इसीलिए वो वस्त्र वस्त्र रखने का, पुरुषों को भी वस्त्र हुए, इसलिए अपन ने वो जनेन्द्र वंदना लिखी ना, उसमें बहुत बुद्धिपूर्वक ये लिखा है, तुम हो अचेलक पार्श प्रभु,
तुम बीत रागी हो गए रागादि भाव निवार कर, तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है।
ये कहते हैं वो कि अचेलकों का धर्म है, अब दिगंबर धर्म के लिए अचेलकों का धर्म है, ऐसा नाम से वो कहते हैं कि जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, नग्न हैं, ये उनका धर्म है। और फिर बाद में उनको ही ऐसा लगा कि ये तो अपन तो 23 ही तीर्थंकर वाले रह गए। एक बंबई में एक आदमी था, होगा अभी भी होगा, तो एक अंगूठी पहने रहता था और उस पर उसने 23 नंबर लिखा रखा था, 23 नंबर माने पार्श्वनाथ। क्या? तो वो मेरे प्रचंड में आता रहा था, अभी 2-4 साल से दिखा नहीं, अध्यात्म सदी सर्कल में शांति रानी, तो वो मुझे ऐसा बताता है, हर एक को बताता है माने पार्श्वनाथ की जाए, 23 नंबर माने, उनको ऐसा लगा कि हमारे तो 23 ही तीर्थंकर रह गए, समझ में आया ना, अचेलक तो महावीर तो इनके खाते में चले गए। तो उनने ये कहना शुरू किया कि महावीर ने वस्त्र छोड़े नहीं थे, छूट गए थे, माने अपन तो कहते हैं ना कि बुद्धि पूर्वक कपड़े त्याग कर नग्न दिगंबर दशा धारण करके केश लोंच करके तब वो मुनिव्रत लेगा, तब जाके 5वें से फिर 7वां गुण स्थान हो जाएगा, ऐसे बोलते ना, माने वो बिल्कुल बुद्धिपूर्वक लेने की चीज है। और वो तो कहते हैं कि नहीं नहीं बस वो तो लिए कपड़े, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कपड़ों पे, तो जो कपड़ा छूटता गया छूटता गया, अब एक दुपट्टा रह गया था उनके, उसे देव दूस ऐसा कुछ बोलते हैं, देवताओं ने दे दिया था, ऐसा कंधे पर डाला रहते थे भगवान महावीर, तो एक झाड़ी में उलझ गया, ऐसा बोलता ना तो उलझ गया, अभी आगे चले गए ऐसा रह गया, तो वो भी छूट गया, ऐसे देखा मर हो गए। ऐसे देखा मर हो गए। अभी एक आप देखना, अमेरिका में जाना तो वहां पर यदि 50 जैन मंदिर हैं, 50 तो पक्के हैं, 50 नहीं 63-64 हैं, कल ही मेरे पास आया है वो जैन का कैलेंडर जेना का, उसमें जेना के 67 मेंबर हैं, मैंने 67 उनकी सोसाइटियां बन गई, समझे ना, मेंबर मैंने 67 गांव में जेनी अमेरिका में के में 67 गांव में, जिसमें 35 गांव में तो मैं गया हूं। पहले बहुत जाता था गांव गांव में, अब तो कम गांव में जाता हूं। तो उन्हें क्या है वहां पर, हर मंदिर में जाके देखना, पार्श्वनाथ की मूर्ति श्वेतांबरों की होगी और महावीर की दिगंबरों की, मतलब विशाल बहुमत है श्वेतांबरों का वहां। विदेश में श्वेतांबर लोग ज्यादा गए हैं, हिंदुस्तान में तो दिगंबरों का होगा, लेकिन उनका विशाल तो उनकी चलती है, तो पार्श्वनाथ को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। अब महावीर तो ठीक है, मैंने पार्श्वनाथ की महिमा उनके यहां बहुत जाना है, इसीलिए जितना झगड़ा वो करते हैं वो सब पार्श्वनाथ पे करते हैं, मक्सी पार्श्वनाथ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, संदेश सकर्वी पार्श्वनाथ। वो महावीर के तुम ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पावागिरी में कहां कोई चक्कर है, वैशाली में कहां कोई चक्कर है, लेकिन पार्श्वनाथ को नहीं छोड़ सकते। और दिगंबर तो जो मिल जाते हैं उनको ले लेते हैं क्या, फिर कई कई फिर दिगंबर कहते हैं हम नहीं लेंगे महावीर के, हम आदिनाथ का आदमान करेंगे, तुम पार्श्वनाथ वे पार्श्वनाथ लेंगे और तुम्हें पार्श्वनाथ लेने नहीं देंगे, तुम अगर हम भी पार्श्वनाथ लेते हैं तो क्या कर सकते, हो सकते हैं ना कि नहीं, नहीं हमने 24 है ना तो उनका भी तो नंबर आना चाहिए ना, तो हमने कहेंगे आदिनाथ को विराजमान, लेकिन ज्यादातर महावीर दिगंबरों के महावीर मिलेंगे और श्वेतांबरों के पार्श्वनाथ मिलेंगे। तो उसमें भी उनका एक उद्देश्य है कि हम पुराने हैं, अपन कहते हैं ना कि उज्जैनी में ऐसा हुआ था तो उस वक्त इसके दिगंबरों से इतने लोग श्वेतांबर अलग हो गए, उनने अपने कपड़ा पहने अपने को मान लिया, तो यानी दिगंबर पहले तो एक ही धर्म था, फिर उससे अलग हटके एक दिगंबर धर्म था महावीर से, फिर बाद में एक श्वेतांबर धर्म हो गया। अब दिगंबर तो महावीर को बेमानते ही हैं, तो वो कहते नहीं नहीं हम ठीक है, महावीर का इनका है, महावीर इतने पुराने जे हैं, लेकिन हम इनसे ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि हम पार्श्वनाथ वाले हैं, हम सचेलक परंपरा के हैं। तो मैंने कहा मेरी जिनेन्द्र वंदना भी कहीं सचेलक परंपरा में ना चली जाए, तो मैंने और 23 तीर्थंकरों को कहीं अचेलक नहीं लिखा, लेकिन पार्श्वनाथ को जरूर अचेलक लिखा। और भाग्य की बात है कि मैंने 24 परिग्रहों से रहित 24 तीर्थंकरों की वंदना की। तो पहले तीर्थंकर में मैं था तो नाम के परिग्रह से रहित, दूसरे तीर्थंकर में क्रोध नाम के परिग्रह से रहित, तीसरे में मान नाम के परिग्रह से रहित। तो भाग्य से वो 23 माह परिग्रह वस्त्र आता क्या, तो उसकी चर्चा तो की है, आप जो पढ़ते हो ना तो परिग्रह का नाम देखते हो गए वंदना में, श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, जिन अजित जीता क्रोध रूपू असंभव मान मार्दव, आता ना आ जाता क्या, तुम ध्यान दिया हो तो। तो ऐसे ही तुम हो अचेलक पार्श प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर, है ना, तो वस्त्र का भी त्याग आ गया तो अचेलक विशेषण भी सार्थक हो गया, और वो बात स्पष्ट हो गई कि ये कपड़े वाले पार्श्वनाथ नहीं है, ये अचेलक पार्श्वनाथ हैं जिनने वस्त्रादि का त्याग किया था। तो 23 तीर्थंकरों ने किया था, उन्होंने भी किया था, कि उनका लिखा क्यों नहीं, तो एक तो कारण है कि 23वां नंबर इनका आता है और 23वें परिग्रह में आता है इसलिए नहीं लिखा, और दूसरे इसलिए नहीं लिखा जिसमें विवाद नहीं है उसमें क्या लिखना, जहां विवाद होता है वहां स्पष्ट उल्लेख की बहुत जरूरत पड़ती है। अब अपनी एक गाथा अपन ने पढ़ी है ना, एक काय पे अपन ने चर्चा कर ली थी, जिन वीर के उपदेश, जिन वीर के उपदेश में पृथकत्व भिन्न प्रदेश था, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया है महावीर भगवान की, कि जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं वे पृथक पृथक कहलाते हैं, उनको पृथकत्व कहते हैं, है ना, और अतत भाव ही अनन्यत्व है, उस रूप नहीं होना इसका नाम है अन्यत्र। है वो अतत कैसे एक हों, तो वो उस रूप नहीं है, ये ज्ञान सुख रूप नहीं है और सुख ज्ञान रूप नहीं है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं। उन्हें अतत यानी वो भिन्नता बतानी है ना, लेकिन ज्ञान के और सुख के प्रदेश एक हैं, इसलिए एक है, अलग नहीं हो सकते। वो कहता है कि एक कैसे हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं अलग कैसे हो सकते हैं, कि अलग करके बताओ। तो प्रदेश भेद नहीं है तो अलग नहीं हो सकते। तो एक भी बहुत मजबूत तर्क है कि भी अभिन्न है, और वेद भिन्न है ये भी मजबूत तर्क है, क्योंकि परिभाषा कैसे बनेगी, ज्ञान जानने का काम करे, सुख आह्लादना रूप है, ज्ञानम मेरा कारण बोला छंद है ना, सुखम आह्लादकम प्रवीर रत्नमाला में है ना, एक श्लोक नहीं है, प्रवीर रत्नमाला नहीं पढ़ी, सुखम आह्लादनाकारम ज्ञानम ये रूप में ऐसा कुछ छंद है कि सुख आह्लादकार है और ज्ञान मेरु वो क्यों न कांता समागमे, कांति जी अब याद आया कि नहीं आया। उनने कहा कि सुख अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है, तो ये दोनों अलग अलग प्रतीत होती हैं, उसके लिए एक छंद दिया है, तो उसके लिए उदाहरण दिया है कि यूना कांता समागमे, जैसे कोई युवक अपनी पत्नी से समागम करता है तो आह्लाद रूप सुख और ज्ञान जानने रूप ज्ञान, ये दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। सर्वासिद्धि में निराज वार्तिक में होंगे हैं? हैं? अब याद आया है, है? मेरे को तो मैंने तब पढ़ी थी, कब, संत त्रेपन में, त्रेपन में बावन में, बावन समझते हो, 52 में पढ़ी थी, सुखम आह्लादनाकारम वेयनम मे रूपनम मेरा है। और एक और है वो शक्ति का है, तीसरा, तीन गुण है ना, वीर ज्ञान और सुख, तो ये तीनों चीजें एक साथ प्रतीत होती हैं, ऐसा वहां कोई प्रकरण है ये बताया है। तो शक्ति के रूप में वीर और ज्ञान जानने के रूप में ज्ञान और आह्लाद के रूप में सुख, ये तीनों चीजें वहां प्राप्त होती हैं। देखो अब इस गाथा का आचार्य अमृतचंद तत्व प्रदीप का में टीका में इस प्रकार व्यक्त करते हैं, विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व का लक्षण है, बहुत चर्चा हो गई अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रदेशों का अलग अलग होना ये पृथकत्व का लक्षण है, माने इसे पृथक कहते हैं, अतः यह पृथकत्व तो सत्ता और द्रव्य में संभव नहीं है, ऐसा पृथकत्व तो हो नहीं सकता। देखो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पृथकत्व है, और हिंदुस्तान और राजस्थान में पृथकत्व नहीं है, क्योंकि यही प्रदेश राजस्थान के हैं और यही प्रदेश हिंदुस्तान में है। अब मेरा एक प्रश्न है, टोडर मल स्मारक भवन हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में, ज्यादा कठिन तो नहीं है, ठीक है। अब टोडर मल स्मारक भवन हिंदुस्तान में है कि राजस्थान में, बोलो जल्दी, राजस्थान में है ना, हिंदुस्तान में तो नहीं है ना। समझ में आया ना कि जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं कोई चीज उन दोनों में नहीं हो सकती, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में नहीं हो सकती, लेकिन जिनके प्रदेश भिन्न नहीं होते हैं उन दोनों में हो सकती नहीं, होना अनिवार्य है। विभक्त प्रदेशत्वम पृथकत्व लक्षणम है ना, अतः यह पृथकत्व तो सत्ता और द्रव्य में संभव नहीं है, क्योंकि गुण और गुणी में सफेदी और दुपट्टे के समान विभक्त प्रदेशत्व का अभाव होता है। अब इस सफेदी और दुपट्टा, अब सफेदी जिन प्रदेशों में है दुपट्टा भी उन्हीं प्रदेशों में है, दुपट्टा जिसे हम कहते हैं वो सफेद दुपट्टा हो तो वो सफेदी और दुपट्टा के प्रदेश अलग अलग नहीं है। हम सफेद दुपट्टा खरीदेंगे तो सफेदी के पैसा अलग नहीं चुकाना पड़ेंगे, उसी भाव आ जाएगी ना, जैसे सफेदी और दुपट्टा के समान। अब वो कह रहे इसको कुछ पे घटा रहे, वो है इस प्रकार है क्या, अब सफेदी पे घटाएंगे दुपट्टा और सफेदी पे, फिर आत्मा उस पे घटाएंगे, शांति से पढ़ लेना बस। जिस प्रकार सफेदी गुण के जो प्रदेश हैं वे ही दुपट्टे रूप गुणी के भी हैं, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। इसी प्रकार सत्ता गुण के जो प्रदेश हैं वे ही प्रदेश गुणी द्रव्य के भी हैं, इसलिए उनमें प्रदेश भेद नहीं है। ऐसा होने पर भी सत्ता और द्रव्य में अन्यत्व है क्या, क्योंकि इनमें अन्यत्व का लक्षण घटित होता है। अब कहते पृथकत्व तो नहीं है, अन्यत्व है, क्या कह रहे, अलग अलग तो नहीं है लेकिन जुदे जुदे हैं। कह रहे पागल हो गया, कैसा लगता ना। अब एक शब्द का प्रयोग वो पृथकता में कर रहा है, वो एक अन्यता में कर रहा है, इसलिए दोनों बातें संभव हो सकती हैं। ऐसा होने पर भी सत्ता और द्रव्य में अन्यत्व है, क्योंकि इनमें अन्यत्व का लक्षण घटित होता है। अतद्भाव अन्यत्व का लक्षण है, वह तो सत्ता और द्रव्य में है ही, क्योंकि गुण और गुणी में सफेदी और दुपट्टे के समान तद्भाव का अभाव है। सफेदी ही दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा सफेद है लेकिन सफेदी अलग है, दुपट्टे में अकेली सफेदी थोड़ी है, और भी तो अनंत गुण है ना। वह इस प्रकार है, जिस प्रकार एक चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाला और अन्य सभी इंद्रियों के गोचर न होने वाले जो सफेदी रूप गुण है, वह समस्त इंद्रियों के गोचर होने वाले दुपट्टे रूप गुणी नहीं है, और जो समस्त इंद्रिय समूह को गोचर होने वाला दुपट्टा है, वह एक चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाला तथा अन्य समस्त इंद्रियों के विषय में नहीं आने वाला सफेदी गुण नहीं है, इसलिए उसके तद्भाव का अभाव है। ये क्या है, आंख का उदाहरण दिया है, आंख से जो पकड़ में आए वो सफेदी एक गुण है, और सब इंद्रियों से जो पकड़ में आए वो सफेद दुपट्टा है। वो छू कर भी हम जान सकते हैं उसे, हम देख करके भी हम जान सकते हैं, पांचों इंद्रियों से भी उसमें इत्र छिड़का हो तो सूंघ के भी जान सकते हैं, कई इंद्रियों से हम जान सकते हैं ना उसको, तो सभी इंद्रियों से जो जानने में आए वो है गुणी, और एक इंद्रिय से जानने में आए वो है गुण। ये दुपट्टे पे लगाया, ऐसे आत्मा पे लगा। अब इंद्रियों से तो आत्मा जानने में आता नहीं है, तो देखो क्या बताया इनने भजन। इसी प्रकार किसी के आश्रय से रहने वाली, देखो अभी सत्ता के सब विशेषण हैं, पंचाशदी काय में तो ऐसी गाथा है, जो स्वयं निर्गुण है सत्ता, देखो ये सत्ता की विशेषताएं, जो किसी के आश्रय में रहने वाली है, पहली बात माने अपने आश्रय नहीं रह सकती, उसे स्थिति वो गुण है ना, तो गुण को किसी गुणी में रहना पड़ेगा। स्वयं निर्गुण है, इसलिए हम निर्गुण है, कैसी बात करते हो, माने जिस गुण में दूसरा गुण नहीं होता है उसे निर्गुण कहते हैं, वो गुण तो है, ज्ञान गुण निर्गुण है, माने ज्ञान गुण में दूसरा कोई गुण नहीं है, है ना। तो सत्ता कैसी है, किसी के आश्रय में रहने वाली है, निर्गुण है और एक गुणमय है, अनंत गुणों में से एक गुण है आप, है ना, और विशेषण है, और वो है विशेष द्रव्य, उसका विशेषण, और ये विधायक है, और वो है विधिमान, है ना, और वृत्ति स्वरूप है, जो सत्ता सत्ता गुण अस्तित्व गुण, वह किसी के आश्रय बिना नहीं रहने वाला गुण वाला अनेक गुणमय विशेष और विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप द्रव्य है, द्रव्य नहीं है, और ये द्रव्य की परिभाषा उस सत्ता से बिल्कुल उल्टी गिनाई है। कैसी उल्टी गिनाई? अब देखो एक एक को मिलाओ, वो किसी के आश्रय रहने वाली तो ये किसी के आश्रय के बिना रहने वाला, फिर उसे कहा था वो निर्गुण तो ये कहेंगे गुण वाला, देखो एक गुणमय तो ये अनेक गुणमय, वो विशेषण तो ये विशेष, वो विधायक तो ये विधिमान, वो वृत्ति स्वरूप तो ये वृत्तिमान स्वरूप, है ना? बिल्कुल उलट उलट के आगे ख्याल में, जो किसी के आश्रय बिना रहने वाला गुण वाला अनेक गुणमय विशेष विधिमान और वृत्तिमान स्वरूप द्रव्य है, वह किसी के आश्रित रहने वाली निर्गुण एक गुणमय विशेषण विधायक और वृत्ति स्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिए इनमें तद्भाव का अभाव है। तद्भाव माने उसी रूप होना, और उसका अभाव माने अतद्भाव। तद्भाव का अभाव है वह अतद्भाव है, ऐसा छंद है नहीं, इसलिए यही है, यही बोलो पढ़ो बता।
उपदेश में प्रतकत्व भिन्न प्रदेशता अतद्भाव ही अन्यत्व है, तो अतत् कैसे एक हो?
अतत् जो तत् माने ये उस रूप नहीं है, जो वही तत् है तन्मय वाला तत् है, मैं तन्मय हो के नहीं जानता, जो वाला वही तथ्य है। ऐसा होने से यद्यपि सत्ता और द्रव्य के कथनचित अनर्थांतरत्व माने अभिन्नता है, तथापि उनके सर्वथा एकत्व होगा ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि तद्भाव एकत्व का लक्षण है, और जो तद्भाव रूप नहीं हो वह सर्वथा एक कैसे हो सकता है? वह तो गुणगुणी के भेद से अनेक ही है। अजय अमरचंद की टीका अपन ने पढ़ ली, अब जयसेन वगैरह की गुरुदेव की है, गुरुदेव ने बहुत अच्छा देखो छह भेद पॉइंट निकाले हैं ना, उसमें नहीं होंगे इसमें होंगे, अब पढ़ेंगे जब आएंगे अगला व्याख्यान जब होगा, कब होगा वो कुछ नहीं कह सकते। आज मैं शाम को जाऊंगा लौट के, तो मैं 1 तारीख को आ जाऊंगा, कैसा क्या आऊंगा मैं कह नहीं सकता, इसलिए प्रवचन कब होगा आने के बाद ही बताऊंगा।
सहजानंदी सोद सरूपी अविनाशी हो